ओम शांति, ओम शांति। अभी तो सब एनर्जेटिक हो गए, थोड़ा सा प्यार से और जोर से ओम शांति। थैंक यू। आज का सेशन आप सबको बैनर देखकर थोड़े से थॉट्स चल रहे होंगे। डेट एंड टॉपिक जो कल था वो आज शिफ्ट किया गया है, इसीलिए बता रहे कि आप सब निश्चिंत होकर उस टॉपिक को सुनेंगे। अदरवाइज अगर अंदर कुछ संकल्प चलते हैं तो हम जो सुन रहे हैं वो अंदर ग्रास नहीं होता। तो आज के सेशन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुगंधा दीदी जी। मंच आपका आह्वान करता है। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिल दीदी जी, आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। माननीय ब्राता प्रेम कुमार मक्कर जी, आपसे भी निवेदन है आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज एक सुंदर विषय को लेकर हम सब यहाँ पर सुनेंगे महानुभावों के विचार। प्रथम हम परमात्मा पिता की दिव्य स्मृति में बैठेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
विचार हो निर्मल तब वाणी में शक्ति आती है। Thank you.
के सत्र के प्रारंभ में मैं ब्रह्म कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि आप पंचासीन हमारे सर्व महानुभावों का तिलक एवं गोलदस्ते के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। महफिल में आए मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति को हम सलाम करते हैं। आपके आने से इस महफिल में चार चांद लग गए। दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। शब्दों से स्वागत, पुष्प और तिलक के द्वारा अभिनंदन। अब गीत के द्वारा हम सबको स्वागत की कड़ी की ओर आगे बढ़ाते हुए मैं आह्वान करना चाहूंगी हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्म कुमार रमेश भाई जी से। आपने कल इनका बहुत ही मधुर आवाज में गीत सुना था। रमेश भाई मधुबन के ही यहाँ पर ही अपनी सेवाएं देते हैं। अनेक स्थानों पर जाकर संगीत के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ना और उसका अनुभव करना, ये बहुत सुंदर कला इनके अंदर विद्यमान है। तो हम सबके बीच गीत प्रस्तुत कर आप सभी का भी अभिनंदन करेंगे, परमात्मा से भी जोड़ेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा के इस महान कार्य में, कर्मयोग के अभियान में आप सभी का अभिनंदन है। दो शब्द आप सभी के लिए। सूरज उगता है रोज पर किसी से पूछता नहीं, बादल बरसते हैं पर हिसाब लेते नहीं। इसी प्रकार जो इंसान देता जाता है उसको कर्मयोग कहलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर दिव्यता आ जाता है। इन्हीं भाव को लेते हुए एक सुंदर सा गीत है आपके सामने। आप सभी गीतों के साथ, म्यूजिक के साथ ताली बजा के स्वागत करेंगे।
करो ऐसा जो तुम्हारी पहचान बन जाए, कर्म करो ऐसा जो तुम्हारी पहचान बन जाए। कदम रखो जहाँ पे तुम वो निशान बन जाए। जिंदगी को जियो ऐसा जो मिसाल बन जाए। इरादा इतना मजबूत हो कि तकदीर बन जाए। कर्म करो ऐसा जो तुम्हारी पहचान बन जाए। हो तुम खूबियों के हुनर है लाजवाब, हौसला तुझ में ताकत है, तुम हो आफताब। दरिया हो तुम खूबियों के हुनर है लाजवाब, हौसला तुझ में ताकत है, तुम हो आफताब। खुद को बदलो इतना, खुद को बदलो इतना कि दुनिया बदल जाए। कर्म करो ऐसा जो तुम्हारी पहचान बन जाए।
मुस्कुरा के थोड़ा ताली बजा सकते हैं अपने लिए।
खाकर पत्थर भी मंदिर के मूर्त बनता, मुस्कुराकर मुश्किलों को जो आसान करता। चोट खाकर पत्थर भी मंदिर के मूर्त बनता, चोट खाने से भी जिसको अपना जो समझता, दिल की दुआएं पाए, दिल की दुआएं पाए, मन चंदन बन जाए। धर्म करो ऐसा जो तुम्हारी पहचान बन जाए। खुशबू लाती है एक दिन ऐसी बार, जैसी बहती नदियां करती कठिनाइयों को पार। मेहनत की खुशबू लाती है एक दिन ऐसी बार, जैसे बहती नदियां करती कठिनाइयों को पार। शिव की याद में मन को लगाए, शिव की याद में मन को लगाए, पावन बन जाए। कर्म करो ऐसा जो तुम्हारी पहचान बन जाए। कदम रखो जहाँ पे तुम वो निशान बन जाए, पहचान बन जाए वो निशान बन जाए, पहचान बन जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी आपका। आज के विषय को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है डिटेच्ड इन्वॉल्वमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, अर्थात हर व्यक्ति निर्णय तो लेता है और कई जिम्मेवारियों को उठाते हुए उसमें पूर्ण रूप से जुड़े रहना, लेकिन भावनात्मक रीति से उस पर कोई दबाव ना आए, पूर्वाग्रह या आसक्ति से स्वयं को अलग भी रखना, ये एक चैलेंज वर्क प्लेस पर सबके पास आती है। जीवन और प्रशासन दोनों में प्रभावी निर्णय लेना और उसके लिए चाहिए संतुलित मन, निष्पक्ष दृष्टिकोण, ये एक सुंदर कला है। परंतु इस कला को हम सबके बीच में कैसे यूज करें, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम इस कला को यूज करने के तरीके भी अपनाते हैं, परंतु उन सारे तरीकों को अपनाने के बावजूद कई बार हम कुछ न कुछ छूट जाता है, कुछ न कुछ पीछे रह जाता है, कुछ पीछे की बातों को हम आगे लेकर आ जाते हैं। तो आज इन्हीं बातों पर, इसी विषय पर अपना विचार कहो, अपने अनुभव हम सबके बीच में शेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिल दीदी जी को। आप एडिशनल कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेशन विंग के कोड काउंट से हैं। आप पिछले 52 ईयर्स से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप ओआरसी की सीनियर फैकल्टी हैं। आपने अभी तक कई इंटरफेथ लीडर्स के कॉन्फ्रेंस में अपने विचारों से अनेकों को लाभान्वित किया है। समय समय पर आपके इंटरव्यू रेडियो, विभिन्न टीवी चैनल्स पर प्रसारित होते रहते हैं। अगर हम एजुकेशन की फील्ड में आपका बैकग्राउंड देखें तो आप पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। आपने लगभग 22 वर्ष बैंक ऑफ इंडिया में कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया और अनेकों को वहां भी मार्गदर्शन किया है। तो प्रशासन के क्षेत्र का, बाहरी दुनिया का भी अनुभव और ब्रह्मा कुमारी इसमें रहते हुए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, ये दोनों प्रकार की कलाएं आपके अंदर सम्मिलित हैं। आप एक कुशल वक्ता तो है ही, बहुमुख प्रतिभा की धनी है। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आज के विषय को आप अपने अनुभवयुक्त विचारों से हम सबके बीच में रखें। आदरणीय और मिल दीदी जी,
ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। नींद तो नहीं आ रही किसी को? रेस्ट किया सभी ने अच्छे से? सबने किया है नहीं किया? सोचा यहाँ तो नींद ही नहीं आती होगी। बहुत लोग ये कहते हैं इतना कूल है हम लोग यहाँ पर कि हमें तो यहाँ नींद ही नहीं आती है। हैं, कितने लोगों ने रेस्ट किया दिन में? किया, अच्छा, ये भी अच्छा साइन है क्योंकि वहां तो टाइम मिलता नहीं है। यहाँ रिलैक्स थे तो बहुत अच्छे से नींद आई, क्योंकि अपने जब प्रोफेशन में होते हैं तो कई बार नींद भी नहीं आती, इतनी व्यस्तता होती है। तो दोनों बातें राइट है, इधर दिस वे और दैट वे। टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं समझती हूँ कि ये आज के समय की पुकार है, डिसीजन मेकिंग और डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। हम सभी जानते हैं कि दिन भर में सारे दिन हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सुबह उठने से लेकर के हमें क्या करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है, अगर बच्चे छोटे हैं तो मार्केट जाना है, क्या सामान लाना, हर मोमेंट हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बारिश हो रही है, बाहर निकले ना निकले, ये तो चलो डेली मर्रा की बातें हो गई, लेकिन अपने फील्ड के अंदर भी, जिस भी फील्ड में हम लोग काम करते हैं, हमें डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है। और यदि कहीं वो डिसीजंस हमारे ठीक नहीं होते हैं तो कई बार लाइफ में बहुत पछताना भी पड़ता है, अरे हम उस समय ये कर लेते, हमारे में लेजीनेस थी, उस समय हमने ये सोचा नहीं, उस समय बचपना था, बड़ों ने कहा भी था, हमने ध्यान नहीं दिया और आज हमें लग रहा है कि अगर वो हम कर जाते तो हमें उससे बहुत बड़ा फायदा हो जाता। आई थिंक वी विल ऑल एग्री टू दिस कि जो वैल्यूज हैं वो लाइफ में बहुत जरूरी हैं, और डिसीजंस अगर हमारे वैल्यू बेस्ड होते हैं तो मैं लाइफ में बहुत सुकून रहता है। ये हम लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यदि हमने कोई बायस्ड होकर के डिसीजन ले लिया कि इसमें चलो मेरा फायदा है, लोगों से मुझे क्या लेना देना, उसका हो या ना हो, मेरे को तो इसमें फायदा हो रहा है ना, जैसे मानो रिश्वत की बात ले ली, तो उस समय क्या होता है, हमारा मन अंदर से खाता रहता है कि नहीं खाता रहता। बाहर से हमें दिख रहा है हमारे पास बहुत धन है, मैंने कमा लिया, बच्चों की पढ़ाई मैंने एक अच्छे स्कूल में करा दी, लेकिन अल्टीमेटली हमारा मन कहीं ना कहीं खाता है। अभी 2 मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में बैठते हैं अपने साथ। चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आते हैं। कोई एक ऐसा चैलेंज आपकी लाइफ में आया हो, चाहे आप बचपन में रहे हो या फिर आप उसके बाद बड़े हुए हों या अभी जॉब प्रोफाइल में हैं, आपने कहीं कोई बहुत बड़ी बात आई हो और उसको वैल्यू के बेस पर निर्णय उसका लिया हो, तो जरा उसको रिकॉल करें। आराम से बैठ जाएं। कोई भी चैलेंज आप इमर्ज कर सकते हैं, फैमिली का भी हो सकता है, रिलेशंस के साथ भी हो सकता है, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। यस, किस किस ने सोचा? यस प्लीज। हाँ जी बताएंगे आप, सरदार भाई। हाँ okay. नहीं ये क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़े।
ओके okay. तो उस सिचुएशन में ऐसा रहा कि ब्रदर को बीच में लगने लगा कि मेरे पास, मतलब सरदार जी के पास तो अपना घर है जिसमें वो रहते आए हैं इतने साल से, और मैं उस घर में रहता रहा हूँ फादर वाले में उनके साथ ही, तो चलो फिर इसको ही चलते रहने देते हैं, ऐसे डिसाइड कि इसे ऐसे रखते हैं और बाद में जब होगा, जब मैं गुजर जाऊंगा और मेरी वाइफ भी गुजर जाएंगी, तो फिर हमारे दो बच्चे हैं आपके दो, तो चारों बांट लेंगे आपस में। तो मैंने उनको यही कहा कि जो सिचुएशन अभी आज हम दोनों के बीच में है, अगर उन दो चार बच्चों में से भी अगर कोई उनमें रहने लगा तो फिर वो बोलेगा यही चीज। फिर कुछ साल निकल गए लेकिन फिर ब्रदर को बात समझ आ गई, तो उन्होंने कहा लेकिन ये तो बात ठीक है पर घर इतना महंगा है कि पैसे ही नहीं है मेरे पास इतने देने के लिए, मेरे पास तो है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, बेच देते हैं इसको जॉइंटली, अच्छा है बल्कि अच्छी प्राइस मिल जाएगी बेचने में। तो वो बोलते नहीं बेचना नहीं चाहता, मैं यही रहना चाहता हूँ, इस तरह करते हुए कुछ और टाइम निकल गया। फिर एक दिन उनका मैसेज आया कि मैंने इतना अमाउंट जमा कर लिया है जो कि मार्केट रेट से भी कम था, सर्कल रेट से भी कम था, पर मैं इतना दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं मैं दे सकता हूँ, बाकी आप डिसाइड करो, अगर जॉइंटली बेचना है तो फिर
जी
कर लेंगे, पर मेरा दिल नहीं मानता है, मतलब मैं रहना तो यहीं चाहता
हूँ। कट शॉर्ट
जी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कम अमाउंट लूंगा जो वो दे सकते हैं, बिकॉज मेरे माइंड में फैमिली हार्मनी बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट थी। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम प्लीज। और कोई एक और यस प्लीज पीछे।
मेरे पिताजी जब वो जीवित थे तो उन्होंने कई बार ये इच्छा प्रकट की थी कि आदमी का शरीर जो है वो मृत्यु के बाद उसको जलाना क्यों, या उसका उसको अंग दान कर देना चाहिए या शरीर दान कर देना चाहिए। तो उनकी मृत्यु हुई आज से करीब 11 साल पहले। मैं उस दिन बाहर था कहीं
जी।
मतलब बिहार में ही था, कहीं बाहर था, मैं लौट के आया 3-4 घंटे में। तो उसके बाद ये हुआ कि उनकी ये इच्छा थी अंतिम, तो घर में सभी लोग, मेरी जो बहनें थी वो कोई भी इस पक्ष में नहीं थे कि नहीं शरीर दान कर दिया, जो एक मान्यता होती है कि शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहिए, परंतु चूंकि उनकी ये इच्छा थी इसलिए हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार नोशनल रूप में करके उनका शरीर वहीं जो मेडिकल कॉलेज था वहां पर दान कर दिया।
देखो कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। आप सबके पास ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, लेकिन फिर भी देखने में क्या आता है कि कई बार लाइफ में प्रेशर्स आ जाते हैं, इन्फ्लुएंसेस ऐसे आ जाते हैं कि उस इन्फ्लुएंस में आकर के हम अपने डिसीजंस जो लेना चाहते हैं वो नहीं लेते हैं। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर्स कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं ना। हर मोमेंट हमें लगता है कि कोई ना कोई बात ऐसी हमारे सामने आ जाती है कि हम लोगों के लिए एक वो स्ट्रेस का कारण बन जाती है। अब जो डिसीजंस होते हैं एक तो हम लॉजिक के बेस पर लेते हैं और एक हमारी इंट्यूशन होती है। इंट्यूशन के बेस पर जो डिसीजंस होते हैं मैं समझती हूँ वो बहुत राइट डिसीजंस होते हैं, पर ये हमारा जो माइंड है ना वो कभी खाली नहीं होता। अब जैसे लॉजिकल के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मानो कोई एम्प्लॉई है वो काम कर रहा है और काम करते करते किसी हॉस्पिटल में है, अब अचानक उसको कॉल आती है कि भाई हमें 20 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। अब 20 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है तो वहां से जिनके पास ये सिलेंडर सप्लाई होता है वो ये कह देता है कि अभी हमारे पास सिलेंडर्स नहीं हैं। तो वो कहता है कि 20 लोगों की डेथ हो जाएगी अगर आप हमें सिलेंडर्स नहीं देंगे तो। इट डजंट बॉदर। एक दूसरा ऑफिसर है मानो इसकी जगह, आप बताना आपको कौन सा ठीक लगता है। वो क्या करता है कि कुछ नहीं सोचता कि 20 सिलेंडर्स का पैसा कौन देगा, वो बाहर में कॉल करता है, बाहर में एक प्राइवेट एजेंसी को कॉल करके कहता है कि 20 सिलेंडर्स आप भिजवा दो, और साथ में अपने सीनियर बॉस को एक व्हाट्सएप कर देता है कि सर मैंने अपने आप ये डिसीजन लिया है आपकी एब्सेंस में, आई होप इतना रिएम्बर्समेंट सवेरे करा देंगे। आप किसके फेवर में रहेंगे? किसके फेवर में रहेंगे? सेकंड की। क्यों? क्योंकि 20 जाने बच गई और वो जो सीनियर ऑफिसर था वो आकर के इतना खुश होता और इतना कहता है कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। देखो सीनियर्स के अंदर भी ह्यूमैनिटी होती है कि नहीं होती है? 20 लोगों की जान बचा देना ये कम बात तो नहीं है। अब एक मानो जैसे हम पुलिस का केस ले लेते हैं, पुलिस के केस में मानो कहीं पता लगता है सीनियर बॉस को कि कहीं बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो क्या है, ऑर्डर्स कर दिए जाते हैं कि आप जाओ और वहां इस झगड़े को समेटो। अब जैसे ही वो झगड़े को समेटने के लिए पुलिस जाती है तो स्टेप्स होते हैं। एकदम ही जाके हम लाठी चार्ज शुरू कर दें वो कोई तरीका नहीं होता। अब उसके तरीके क्या होते हैं कि आप अपनी यूनिफॉर्म में जाओ। यूनिफॉर्म में आप जाओगे तो क्या हो गया, देख करके आधी भीड़ तो वैसे ही डर जाती है। और डरने के बाद फिर क्या होता है, आधी भीड़ जब डर गई उसके बाद आप ना माइक लेकर के उस समय बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम है आपके सामने, आप में से 5 लोग मेरे पास आओ। लोग नहीं आएंगे, डर जाएंगे और लोग निकल जाएंगे उसमें से। अब उसके बाद भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है, लोग नहीं आते हैं, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को डिस्पर्स करने के लिए हम लोग आंसू वाली जो गैस होती है हम उसको छोड़ सकते हैं। तब भी लोग अगर नहीं काबू में आ रहे तो लाठी भी हम चलाएं तो पहले कहाँ चलाएं, तरीका सिखाया जाता है ना, कहाँ चलाएं, पहले पांव के पास चलें, सबको मालूम है। और फिर उसके बाद भी लोग काबू में नहीं आते तो फिर हम उसका कोई, पर कहीं ना कहीं एक आपके अंदर ह्यूमैनिटी थी। अब जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल में आप ये देखिए लॉजिक ने क्या किया, लॉजिक ने क्या किया, दीवार खड़ी कर दी कि नहीं हो सकता। हम लोग मोस्टली यही कह देते हैं ना कि नहीं हो सकता सर ये काम, ये बड़ा डिफिकल्ट है, मैंने कभी किया नहीं है। तो हमने क्या किया, कोई सोल्यूशन मेरे सामने आए, हमने निर्णय ले लिया कि नहीं हम नहीं कर सकते इस काम को। और दूसरे ने क्या किया, उसने इंटेलेक्ट का दरवाजा खोल दिया। खोला कि नहीं खोला, सोल्यूशन इमर्जेस। कब सोल्यूशन इमर्ज होते हैं, जब हम किसी भी परिस्थिति के प्रति थोड़े से भी पॉजिटिव होते हैं तो हमारे मन के अंदर ये बात इमर्ज होती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। इसी तरह के और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि प्रेशर जब हमारे सामने बहुत आते हैं तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को भूल जाते हैं। अब आप देखिए कि मुझे वही काम करना है जो बिल्कुल ठीक है। अब किसी ने आकर के मेरे को थोड़ा सा इंसेंटिव दे दिया तो हम उस तरफ झुक जाते हैं। तो हमने क्या छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया हमने, इंटेग्रिटी को छोड़ दिया, वैल्यू को छोड़ दिया ना हमने कि भाई क्या फर्क पड़ता है, बच्चों को पालना है, परिवार को बड़ा करना है, सब लोग बड़ी गाड़ी में जाते, मेरे पास भी होंगी, मेरे पास भी लेबल ड्रेसेस होंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। इसी तरह से है, सही तो करेंगे, कोई काम है सही है तो मुझे करना है, दोस्त हो या दुश्मन सभी बराबर हैं। होता है आजकल ऐसे? नहीं होता, दोस्त हो या दुश्मन सभी बराबर हैं। लेकिन हम लोग कैसे चलते हैं, हम लोग उसको फेवर करते हैं जो हमारे कास्ट या क्रीड से जुड़ा होता है, एजुकेशन से जुड़ा होता है, हम उनको प्रति बायस्ड हो जाते हैं। हम लोग कई ऑर्गेनाइजेशंस में जब टॉक्स देने के लिए जाते हैं तो हम लोगों ने देखा कि वहां पर एक बार किसी ने बताया कि हमारे ये जो सीनियर चीफ है ना, ये पता मोस्टली क्या करते हैं, ये उड़ीसा साइड के, सारे उड़ीसा के लोग इन्होंने फैक्ट्री में लाके भर्ती कर रखे हैं। क्या है ये, क्या है, कास्टिज्म। कास्टिज्म है या नहीं है? तो जब हम इससे अटैच हो गए तो हम लोग डिटैच होकर के तो काम नहीं कर सकते ना। अब वहां से हम क्या डिमांड कर रहे हैं, जिनको हम अपने यहां रख रहे हैं उनसे हमारी क्या डिमांड है, दे विल रिस्पेक्ट अस। यही होता है ना कि मेरे लोग हैं, हमने उनको एम्प्लॉय किया है तो मेरी बात को सुनेंगे, मेरे हिसाब से काम करेंगे और मेरे बारे में आवाज उठाएंगे। तो दिस इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। इज इट सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है जब एक व्यक्ति आपको अंदर से प्यार करे, दिल से प्यार करे, अभी आपके प्रोफाइल के बेस पर वो आपको प्यार कर रहे हैं। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, हा? अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि कोई भी सिचुएशन के प्रति मुझे रिस्पॉन्स कैसे देना है, कैसे रिस्पॉन्स देना, रिएक्टिव होना चाहिए या एक्शन में आना चाहिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे ना, कोई बात है तो क्या हो गई, सॉर्ट आउट हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी वैल्यू है। अकाउंटेबिलिटी माना कि कोई भी हमें काम करना है, किसी ने किया तो उन्होंने किया बहुत अच्छा, और जब गलती कोई हो गई तो हम सब थे इन्वॉल्व उसके अंदर। हम करते हैं ऐसे, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की जरा सी गलती हमने देख ली तो हम उसके लिए एक इशू बना करके खड़ा कर देते हैं कि इसकी इमेज को किसी तरह से डाउन कर दिया जाए। हम लोगों ने देखा ब्रह्मा कुमारी, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने क्यों ज्वाइन की, क्या कोई दिक्कत थी क्या आपको। हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारी इसी वजह से ज्वाइन की क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यूज को अपनी लाइफ में कैसे लेके आना, उनको बढ़ाना कैसे है, ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी। कंपैशन, हम सब चाहते हैं कि मेरे साथ कोई करुणा का भाव रखे, लेकिन हम किसी के साथ कितना करुणा का भाव रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो वैल्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, ये हमारी खत्म होती जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि हर घड़ी हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते रहें तो हम कैसे काम कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, कई चीजें मन से रिलेटेड होती हैं, कई चीजें बोल से रिलेटेड होती हैं, कई चीजें फिजिकल एक्शन से भी रिलेटेड होती हैं। एक बार की मैं बात बताती हूँ कि कहीं से हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। अब वहां पे हमने क्या देखा, हम लोग 5-6 लोग अपने व्हीकल में थे, गाड़ी फुल थी, और एक व्यक्ति था वो सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था सूटकेस के साथ। तो सूटकेस से दौड़ता हुआ जा रहा है तो आप समझ जाते हैं ना कि वो एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा है। तो एकदम मन में आया कि इसको हम अपनी गाड़ी में बिठा लें किसी तरह। तो गाड़ी में देखा बिल्कुल जगह नहीं थी। अब हम उसको उतर के भी नहीं कह सकते थे कि भैया कोई बात नहीं आप पहुंच जाओगे, गाड़ी बड़ी स्पीड पे थी, उसको रोकना भी मुश्किल था, शायद हम लोग भी थोड़ा लेट हो रहे थे। तो अब हमारे पास कौन सी पावर थी, माइंड पावर थी, इंस्टेड ऑफ कि पता नहीं बेचारा पहुंच पाएगा कि नहीं, क्या होगा कैसे होगा, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड को हमेशा टेढ़ा कर देता है। तो उस समय अंदर में हमने थॉट क्रिएट किया कि दिस इज द पर्सन, ये यहाँ पे इतने बजे पहुंचना चाहता है, जिस भी लक्ष्य के लिए जहां पर भी ये जा रहा है ये बहुत सुविधा पूर्वक पहुंच जाए। और उसके लिए ऐसे रास्ता क्लियर किया कि जैसे जहां उसको पहुंचना है वहां सब कुछ उसके लिए बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा सोचने के बाद मैंने साथियों से भी पूछा कि भाई आप सब ने इसको नीचे देखा खड़े हुए, आपके मन में क्या थॉट आया इसको देख करके, भाग रहा था ये। कहते हमने भी यही किया, उसको हमने गुड वाइब्रेशंस दिए कि जहां पर भी ये जाना चाह रहा है ये ठीक से पहुंच जाए। एंड विल यू बिलीव, जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो हमने देखा हमारे से आगे वो लाइन में लगा हुआ था। कैसे हुआ ये, अब ये बड़ी सटल चीजें हैं, बहुत सटल हैं, जिसको हम लोग कहेंगे अच्छा हो गया, कोइंसिडेंस हो गया तो आपने यहाँ सुना दिया। ऐसी बात नहीं है कि जितना, क्योंकि थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस है, अवर थॉट्स दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और हमारे जो थॉट्स होते हैं दे ट्रेवल विद द स्पीड हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट, इतनी स्पीड से वो चलते हैं। तो वो फिर जब वहां पर पहुंच गए तो उसको हमने देख करके फिर हमने स्माइल भी पास किया और उससे पूछा भी सही कि आप ही थे ना जो सूटकेस लेके दौड़ते चले आ रहे थे। तो उसने कहा मैं ही था। तो बहुत खुशी हुई, सुकून मिला कि हमारा समय था वो भी सही प्रकार से। मनसा से हम लोग गलत सोचें, कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया, कोई डेथ हो गई, आप नहीं जा सकते, तो एक ये डिसीजन तो ले सकते हैं कि मैं अपने मन से अच्छे वाइब्रेशंस उनको दूं ताकि उनको सुकून मिले। तो ये डायवर्शन ब्रह्मा कुमारीज में आके हम लोगों ने सीखा और हमने ये पाया कि हमने अपने आप को बड़ा एम्पावर्ड भी फील किया। अब हम देखेंगे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे माइंड में अंदर में बहुत नॉइज है, बहुत ज्यादा नॉइज है। आजकल आप देखेंगे ओवर थिंकिंग बहुत लाइमलाइट में है ये विषय। कारण क्या कि हम सारा दिन भर सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं खरपतवार ही अपने आप उगता, बगीचा तो कभी अपने आप नहीं उगता। उगता खर बगीचा अपने आप, कभी नहीं उगता। बस एक से दूसरा ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो उसने ये कह दिया, उसको ऐसा कहना नहीं चाहिए था, उसको हम देख लेंगे, उसको हम बता देंगे, 10 लोगों को हम अपनी बात सुनाएंगे। तो इससे क्या होता है, सिचुएशन और प्रॉब्लम कम होती है कि ज्यादा होती है।
तो पहले जो हम एनर्जी अपने अंदर में क्रिएट कर रहे हैं वो एनर्जी कहाँ जा रही है? मेरे अंदर में क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। मेरे अंदर में जब नेगेटिव क्रिएट हो रहा है तो फर्स्ट मेरा माइंड कैसा हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है। मेरा माइंड पॉल्यूटेड हो रहा है, किया किसने? हम कहेंगे उन्होंने किया ना, उन्होंने गलत काम किया, इसी वजह से तो मेरा माइंड पॉल्यूट हुआ। माइंड का मास्टर कौन है? माइंड का मास्टर कौन है? आप थॉट क्रिएट करते हैं तभी तो एक्शन में आते हैं या नहीं आते? हम ऐसा ही करते हैं ना, जब थॉट क्रिएट करते हैं तो ही हम लोग एक्शन में आते हैं। आप थॉट ही नहीं क्रिएट करेंगे, उसको एक्शन में ही नहीं लाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो कर्म में आ नहीं सकता। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज, कि मैं अपने थॉट्स का मास्टर हूं। ये थॉट्स मेरे अपने अंडर कंट्रोल हैं। तो इसको हमें कंट्रोल करने के लिए बहुत एफर्ट करने की जरूरत है। अब ये थॉट्स जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कई तरह से काम कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में। हमें कई बार पता ही नहीं लगता कि कहाँ तक, किस लेवल तक ये हमारे अंदर में डीप रूटेड हैं। अब जैसे सेक्स लस्ट ले लीजिए, आजकल कितने रेप केसेस हो जाते हैं। ऑफिस में आजकल 24 आवर्स जॉब होती है, उसमें क्या होता है, कितना फीमेल्स मेल्स सब आपस में अनसेफ फील करते हैं। तो जो अनसेफ फील करेगा तो वो क्या काम करेगा? ये सटल फॉर्म क्या होती है, किसकी होती है, किसकी होती है? ये सेक्स लस्ट की, सेक्स लस्ट की सटल फॉर्म है। किसी को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है जो हम देखते हैं। मैं ऑफिस में जाती थी, काम करती थी, लोगों को काम करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपस में बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, अंदर में एक डिफरेंट फीलिंग है। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसी तरह से हम देखते हैं एंगर। एंगर बहुत सटल फॉर्म में होता है। अब एंगर सटल फॉर्म में कैसे होता है? हम किसी के लिए गलत सोचे जा रहे हैं, बाहर नहीं कह पा रहे लेकिन अंदर से उगले जा रहे हैं उसको। हम इसको देख लेंगे, हम इसको बता देंगे, और बाहर से कोई आ रहा है तो कहते हैं अरे आइए आप, आपका आना तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो वी आर व्हाट वी आर इनसाइड, वी आर नॉट आउटसाइड, वी आर नॉट द सेम। जब हम अंदर और बाहर सेम नहीं हैं तो हम समाज को क्या दे पाएंगे? मेरे अंदर से वही एनर्जी निकलेगी, जो मेरे वर्ड्स निकलेंगे उसके अंदर वो पावर नहीं होगी। इसी तरह से ग्रीड को ले लीजिए। ग्रीड आप देखिए कितनी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है? मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। ज्यादा हमें किसके लिए चाहिए, पेटियों के लिए या पेट के लिए? किसके लिए चाहिए? दिखावे के लिए हमें बहुत ज्यादा। किसको दिखाना है? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम में अगर हम लोग जीते हैं तो मैं समझती हूँ कि हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। वी आर 7 brothers and sisters, 3 sisters, बहुत बड़ी फैमिली थी हम लोगों की। हमारे फादर कस्टम्स में काम करते थे, कभी उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। और आप समझते हैं कि आज से 50 साल पहले 60 साल पहले कस्टम्स में पैसा ले लो तो आप बहुत फ्लरिश कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हमें एक बहुत बढ़िया करैक्टर दिया, बहुत बढ़िया करैक्टर दिया। एक मेरे अपने ही ब्रदर थे, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर। तो जब वो वहां पर उन्होंने बांग्लादेश में ज्वाइन करने के लिए गए तो उन्होंने, उनके बॉस ने, चेयरमैन ने बोला अगले दिन कि सर आइएगा, चलेंगे क्लब। तो चले तो गए, फर्स्ट डे था, इसलिए जाने के बाद उन्होंने ऑफर किया शराब। तो उन्होंने कहा प्लीज आई एम सॉरी, मेरी अपनी लाइफ के कुछ वैल्यूज हैं, मैं उसी के अंदर में रह करके काम करना चाहता हूँ। और जब वो सब जगह से काफी हाई पोस्ट पे काम करने के बाद जब वो रिटायर हुए, कहते आज सबसे ज्यादा सुकून मेरे को इसी बात का है कि मैंने अपने जीवन के अंदर वैल्यूज को बना के रखा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमारी रूट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। बेस हमारा स्ट्रांग नहीं होता, बच्चे जब देखते हैं तो उनके अंदर भी तो यही बातें पैदा होती है ना। आजकल देखो बच्चों के अंदर पैसा ही पैसा सब कुछ है, उनके लिए और कोई चीजें है ही नहीं। तो ये वैल्यूज कौन देगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बड़े प्यार से बच्चों को समझाइए, उनको बच्चों की तरह देखिए और उनको ये बताएं कि भाई ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है। उनकी बात को समझिए। उनको काम करने का अगर हम मौका देते हैं तो आई थिंक दे गिव वेरी गुड आउटपुट। हम देखते थे हमारी बॉस के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी। सर मैं ना सेंटर बना रही हूँ, आश्रम बना रही हूँ, प्लीज मेरी आप स्टैगरिंग कर दो, मैं शाम की ड्यूटी में आ जाऊंगी, मॉर्निंग आवर्स मेरे को आप फ्री कर दो. ही डिड इट बिकॉज ही न्यू दैट शी इज अ सिंसियर वर्कर. ठीक है ना? तो इसलिए एडजस्टमेंट किसी भी लाइफ में कहीं भी हो सकती है, परंतु इसके लिए एक शिफ्ट लाने की हमें जरूरत है कि हम किसी भी नेगेटिविटी से बायस ना हो और हम लोग क्या करें. शिफ्ट कौन सी? रोल टू सोल. आई एम नॉट दिस रोल. दिस इज असाइन टू मी. दिस इज अ टेम्परेरी थिंग विच विल वैनिश वन डे. पर मेरा अल्टीमेटली क्या है, मेरा जो रोल है वो क्या है? आई एम अ सोल. किसी को भी देखना है एक एनर्जी के लेवल पर देखना है. तो जब इस लेवल पर हम दूसरों को देखते हैं तो क्या होता है कि हम, हमारा मन भी शांत होता है और हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. और जब मन शांत होता है तो कोई आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा निर्णय ले पाते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत छोटी हो जाती है. अब जिसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ केवी के राजू नागार्जुना ग्रुप ऑफ फर्टिलाइजर्स के वो चेयरमैन थे, साउथ इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट. वंस व्हाट हैपन, हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और उनको एक स्पीकर के रूप में बुलाया था, चीफ गेस्ट. तो जब वो वहां पर आए तो बीच में अचानक लाइट चली गई और हम लोगों ने जो विषय लिया था योगा फॉर इंडस्ट्री, तो उनको बड़ा अच्छा लगा. कहते ये हमारे बेनिफिट के लिए सोचते हैं. तो लाइट जब चली गई तो उस समय सारे लोग शांति से बैठे रहे और बहुत अच्छा वातावरण रहा. तो उसके बाद जब वो पूरा हो गया तो बहुत इम्प्रेस हुए. कहते कि हमारे यहाँ तो कोई फंक्शन होता, जरा लाइट चली जाए तो लोग सीटियां बजाना शुरू कर देते और यहाँ तो इतना क्वाइटली बैठे हुए हैं और कोई उठ के भी नहीं गया. तो ही गॉट सरप्राइज. वो दादी जी के पास आए, द वन हु वॉज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम. तो उन्होंने कहा कि आप भी मुझे अपनी ये कोई पावर दीजिए जो आपके पास है, जो आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. तो उन्होंने कहा मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है, एंड सेकेंडली आई ट्रीट एवरीवन एज माय फैमिली मेंबर एंड आई ट्रस्ट देम आल्सो. इवन इफ दे डू रॉन्ग, मैं उनको हमेशा कहती हूँ ये गलत नहीं, मैं गलत हूँ, मैंने इनको सिखाया नहीं, मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया. दिस इज अकाउंटेबिलिटी, कि दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझना. हमारी सेंटर टीचर्स क्या करती हैं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाते हैं, डेली 300, 500, 800, 1000 तक के स्टूडेंट्स आते हैं और डेली स्टडी करते हैं. तो इस तरह से तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल जाती. हम लोग अपने को मदर्स समझते हैं, हम समझते हैं दे आर आवर चिल्ड्रन एंड वी हैव टू सस्टेन देम. गलती की अरे कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, हो गई तो हो गई, अब आगे बढ़ो. तो इसी वजह से हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग है. टीम स्ट्रांग होने का यही कारण है. 21 जून को हम लोग आयुष मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, योगा डे का जो प्रोग्राम होता है, तो वो इतने हैरान होते हैं कि आप इतने बड़े बड़े लोगों को इकट्ठे करके इतनी बड़ी गैदरिंग्स आप लोग कर कैसे लेते हैं. जस्ट द टीम बिल्डिंग, दैट इज ऑल्सो ए वैल्यू. और राइट डिसीजंस हमारे तभी होते हैं जब हम लोग, इंट्यूशंस हमारी स्ट्रांग होती हैं. तो इंट्यूशंस को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है. तो एक छोटी सी एक्टिविटी, कोई भी चैलेंज आता है तो हम उस बात को ऐसे ना करें. विजुअलाइज करो कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है. मन में फर्स्ट थॉट आता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, इससे आगे नहीं सोचो. बोलो ओके, नो प्रॉब्लम, हल हो जाएगी. आपने क्या किया, जैसे ही उसके बारे में सोचना शुरू किया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आपका माइंड खाली हुआ, आप एम्पावर हुए, वो प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी क्योंकि आपके मन में सॉल्यूशंस इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे. तो इसको खाली करना बहुत जरूरी. इट इज द सेम एग्जांपल लाइक इन अ ओशन व्हाट वी सी. जब बहुत सारी लहरें होती हैं तो आप कुछ नहीं विजुअलाइज कर सकते. पानी भी अगर ऐसे ऐसे हो रहा हो तो आप कुछ नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है तो हम उसको देख लेते हैं. देख लेते हैं कि नहीं देख लेते, कि नीचे गंदा है, गंदा है, क्या है. तो ये सारी बातें हमें तभी दिखाई पड़ती हैं. तो इसी तरह से मन हमारा स्टेबल हो, क्योंकि डिसीजंस हमारे तब अच्छे होंगे जब यहाँ पर जो ब्लॉकेज है एक तो वो खत्म हो. हम लोग ब्लॉकेज डेली बहुत क्रिएट करते हैं. ब्लॉकेज क्रिएट करने से क्या होता है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो इसी तरह से हम लोगों को भी फिर
अटैक आने लगते हैं और हम ये सोचने लगते हैं तो बड़ा मुश्किल है, लाइफ तो बड़ी मुश्किल है, जीना बड़ा मुश्किल है, कैसे चलें, क्या करें, ये सारी बातें हमारे मन के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए रोल ऑफ डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, इसका क्या मतलब होता है? आप कहेंगे कि हम घर बार छोड़ दें क्या, जंगल में चले जाएं क्या, कैसे हम लोग डिटैच रहें? आप डिटैच सिचुएशन से मत, आप डिटैच जो है उसमें क्या हो कि आप बी इन्वॉल्व इन योर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है, अच्छा आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बी सिंसियर अबाउट इट, पर क्या करें आप उसमें इमोशनली अटैच मत होइए। जैसे मानो बच्चे को ही आप घर में पाल रहे हैं, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा इकलौता बेटा, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, अरे मेरी प्रमोशन का सवाल है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा। आप अपना काम सिंसियरली करते चलिए, एक दिन ऐसा आएगा कि ट्रूथ आपके सामने आएगी और जब आप उनके अंदर ये चीजें भरेंगे तो हम देखते हैं कि ऐसी चीजों को भरने से ऑटोमेटिकली हमने देखा कि वैल्यूज प्रमोट होती हैं और बच्चे भी स्ट्रांग बनते हैं और ऑफिस में भी जिन लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं वो भी हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। और यदि अटैचमेंट होती है सिचुएशन के साथ में तो वहां क्या होता है, क्या आएगा सबसे पहले, फियर, डर लगेगा ना। जैसे मैंने कहा प्रमोशन का केस है, अब कुछ हो गया तो क्या होगा, अरे वो कहीं फायर ना कर दे, वो कुछ बोल ना दे बॉस को, तो डर लगता है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, फिर प्रेशर बन जाता है, यहाँ पर क्या बना, फिर प्रेशर बन गया और फिर क्या हो गया, हम सिचुएशन के बायस हो जाते हैं। तो इसीलिए डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम है, रखिए उसको, दो मिनट कूल माइंड से बैठिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए और थॉट्स को ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप उस पर एक्शन लीजिए, तो आप पाएंगे कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जो मैंने केवी के राजू की स्टोरी आपको सुनाई, क्या हुआ, उन्होंने वापस जाकर मेडिटेशन करना शुरू किया और इतना फायदा हुआ उनको, रात के 10 बजे के बाद की अपॉइंटमेंट्स उन्होंने अपने जूनियर्स को देनी शुरू कर दी और वो सवेरे उठने लगे 3:30 बजे या 4 बजे और उठकर उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। और मेडिटेशन, आधा पौना घंटा मेडिटेशन करने करते थे फॉर सेल्फ और फिर अपनी प्रॉब्लम्स, आज मेरे सामने क्या आने वाली है मेरी इंडस्ट्री के अंदर, उसको इमर्ज करते थे। तो वो बताते हैं कि मेरा जो टर्नओवर था कंपनी का वो कई गुना बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। हम लोग देखो 3:30 बजे यहाँ पे, बहुत, मैं तो फिर भी लेट उठती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे भाई बहन है जो 2-2 बजे उठ के बैठ जाते हैं, 2-2, 2:30 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं, 8 बजे तक साइलेंस में रहते हैं और फिर बाकी देखो सारा दिन भर काम करते हैं और हाई पोजीशंस पे भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाई पोजीशन वाले यहाँ नहीं, इवन द्रौपदी मुर्मू मैडम, प्रॉब्ली आप लोगों को ये नहीं मालूम हो कि शी इज पक्का बीके, कितनों को मालूम है, हाथ खड़ा करो जरा, बस पक्का बीके है वो, पूरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। घर में अपने वहां राष्ट्रपति भवन में मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है और जब अपने ऑफिस में जाती है टेबल पर वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा रखती है, पहले आराम से बैठती है, अपने को प्रभु के प्रति समर्पित करती है और करने के बाद अपना काम शुरू करती है। डू वी रिस्पेक्ट दैट लेडी टुडे और नॉट? Each and everyone, not only in Brahma Kumaris, but each and everyone respect her just because of her values in life. She gives right decisions. और सही बात बोलती भी है, मैंने कई बार उनकी टॉक्स भी सुनी है, एक बार जजेस के कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी, सारी बातें उसने बोल दी लेकिन इतने पोलाइट उससे बोली कि सारे जजेस ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया। आप जेल बनाए चले जा रहे हो, आप जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, आप उन बच्चों को क्यों नहीं वहां से निकालते हो, क्यों नहीं निकालते हो वहां से, जेल को खाली करो, जेल बढ़ाना कोई अच्छा साइन थोड़ी ही है, हॉस्पिटल्स ज्यादा बना देना ये कोई अच्छा साइन थोड़ी है, वो ठीक है हम ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं लेकिन दिस इज नॉट ए गुड साइन। होना क्या चाहिए, घर हर घर घर में, हर घर के गली के मन नुक्कड़ पे मंदिर होना चाहिए, मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, होना ये चाहिए ताकि लोगों को कोई ना कोई फैसिलिटी मिल सके। तो इसलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अगर हम इसको करना चाहते हैं तो एक इंटरनल डायमेंशन है और एक इसका एक्सटर्नल डायमेंशन है। इंटरनल डायमेंशन इसका क्या है कि हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में है, ये पक्की बात है जो आपको लेसन में भी बताया गया होगा। और थॉट्स एंड एटीट्यूड्स दे आर सेल्फ क्रिएटेड, मैं किसी बात के प्रति क्या नजरिया रखती हूँ वो मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है। कई बार दूसरा मेरे बारे में अच्छा सोच रहा होता है और हम उसके बारे में गलत सोच रहे होते हैं, तो इसलिए ये मेरा अपना डायमेंशन है इंटरनल, मुझे इस पर कंट्रोल रखना है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में हम कहेंगे ऑब्जर्व द सिचुएशन विदाउट बीइंग बायस्ड, बायस नहीं हो और सिचुएशन के बारे में हम लोग सोचें और सी द बिगर पर्सपेक्टिव, कम आउट ऑफ द बॉक्स और तब उस सिचुएशन के बारे में सोचें। उसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है, अरे प्रॉब्लम आ गई, ये नहीं एक कप चाय पी या किसी को बताई, दैट विल नॉट गिव यू सोल्यूशन समटाइम्स। दो वी हैव टू टेक डिसीजंस, वी हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ अदर्स एज वेल, लेकिन थोड़ा सा साइलेंस में बैठे, जो मैं आपको भी बताती हूँ कि स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयर, तीन वर्ड्स हैं, पॉज, थिंक एंड एक्ट, ये भी तीन वर्ड्स हैं, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। कोई भी बात आपके सामने आई है आप आराम से बैठ जाएं। बातों को साइड पे रख दें और मन को कहें कि मेरा टाइम मेरे अपने लिए है। मन को भीतर लाते हुए अपने आप को एक थॉट दें, आई एम अ पीसफुल बीइंग, कोई अननेसेसरी थॉट्स हैं तो उनको साइड पे रख दें और संकल्प दें कि मेरा टाइम है मेरे अपने लिए। अब उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं अपने सामने इमर्श करें। चार्ज योर सोल बैटरी बाय कनेक्टिंग योर सेल्फ टू द सुप्रीम। Think of the solution. Solutions are within. After some time, with a quiet mind, if you will start thinking about the problem, if not at that very moment, but after some time, maybe after 2-3 days, the solution will emerge. Come down. Thank you very much. Om Shanti.
Bahut bahut धन्यवाद उर्मिल दीदी जी। आपके अनुभवों से हमने ये जाना कि यदि हम डिटैच होना चाहते हैं और इन्वॉल्व दोनों बातें चाहिए तो हमारा मन स्थिर होना चाहिए। मन की स्थिरता वही हमारे मनसा संकल्पों को शुद्ध श्रेष्ठ बनाती है और उसके साथ ही हमारे पास वैल्यूज आती हैं। किसी भी निर्णय की गुणवत्ता हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है और जब हम इन्वॉल्व भी डिटैच भी रहते, इन्वॉल्व भी होते तो हम निर्णय अधिक संतुलित, न्यायप्रिय
एवं दूरगामी प्रभाव वाले डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आह्वान करना चाहूंगी हमारे माननीय प्राता प्रेम कुमार जी मक्कल, आप हमारे बीच में दिल्ली से पधारे हुए हैं। आपके बारे में, आपके परिचय में कहना चाहूंगी कि आप फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, वर्तमान समय आप जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस पद पर कार्य कर रहे हैं। आपने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे अधिकारियों के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं, और उसके लिए आप बहुत नामी ग्रामी हैं। आज के इस विषय को आप अपने शब्दों में, अपने अनुभवों के आधार से हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय माननीय ब्रता प्रेम कुमार मक्कल जी।
ओम शांति। काफी सारी खुशी हो रही है ज्ञान सरोवर के इस खूबसूरत परिसर के अंदर आकर। एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड नाम भी बहुत खूबसूरत है, और इतने अच्छे हमारी इलीट जो ऑडियंस है, आप सबसे इतनी स्पेशल सोल्स हैं आप सब, और बड़ी हमारी सीनियर जो हमारी टीचर बहन हैं, दीदी हैं, उनके भी दर्शन करने का मौका मिला। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है सबको यहाँ का? तो आई थिंक ब्रह्मा कुमारी इसके लिए जिन्होंने ये फैसिलिटेट करी, एक बार क्लैपिंग कर देते हैं हम लोग। आज सुबह से ही हम लोग जब सेशन अटेंड कर रहे हैं, मॉर्निंग में 6:30 पे मेडिटेशन का सेशन था, पीस से रिलेटेड सेशंस थे, वो सेशन पीस से रिलेटेड थे। और बाकी मैं सारा का सारा जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना हुआ है, जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, इट इज सो वंडरफुल, थैंक्स टू द पीपल हु हैव डिजाइन। और मैं एनालाइज कर रहा था वेदर इट इज पीस और एम्पावरमेंट, किसी के बारे में भी जब बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेशन में देख रहा था जितना भी है वो एक फाउंडेशन है। अपने आप को किस तरह से इक्विप करते हैं, कोई और तो इक्विप करेगा नहीं। यहां से हम सुन के जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे नोबडी कैन एम्पावर अस, जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे नोबडी कैन मेक अस दैट पीसफुल। कितने भी स्पीकर्स हों, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स भी हों, डिसीजन तो अल्टीमेटली हमें लेना है। वो जो मॉर्निंग का सेशन था वो उसी से रिलेटेड था। आई डोंट नो कितने लोग अटेंड कर पाए हैं या कितनी सिंसियरिटी के साथ कर पाए हैं, नहीं तो मौका जरूर मिलेगा यहां, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी किसी सेंटर में मौका मिलेगा, किसी से बात कर सकते हैं। दैट इज सो सो इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग उसको मॉर्निंग से रिलेट करते हुए देखें, मैं देखो थोड़ा सा आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं ब्रह्मा कुमारी के कॉन्टेक्ट में आ गया था अराउंड 25 ईयर्स बिफोर। मेरी वाइफ के किसी पेशेंट ने बताया, हमने वहां जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए। एनीवे बहुत थोड़ी लंबी स्टोरी है, टाइम आज अभी लिमिटेड मिला हुआ है। हमने जाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले यही शुरुआत हुई कि पहले तो अपने आप को जानो, हाउ पीसफुल यू आर, हाउ पावरफुल यू आर। पीस हमारी इतनी हो, भगवान जो है वो ओशन है पीस का, हम उसके बच्चे हों तो पीस हमारी कैसे डिस्टर्ब हो सकती है। भगवान हमारा ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, हमारे पास माइंड की कमी कैसे हो सकती है, कैसे हम लोग लो फील कर सकते हैं किसी चीज को। इस तरह की जब सीरीज ऑफ बातें अपने बारे में जाने की, यस हम लोग भगवान के बच्चे, हमें विरासत में सब चीजें मिली हैं, भगवान के बारे में जाना और कुछ फंडामेंटल और पॉइंट्स जाने कि हाउ दिस ड्रामा वर्क्स, किस तरह से हर आदमी अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। तो जब जाना, कोई हमारे सामने आके चिल्ला भी रहा है, अगर आपके दिमाग में ये आ गया ये नाटक में अपना रोल प्ले कर रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा? मूवी में नहीं आता ना, पता है ये विलेन का काम कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं आता क्योंकि विलेन तो अपना काम कर रहा है। ऐसे ही हम लोग पता लगा कि यस हम लोग बार बार टीचिंग्स के साथ साथ हमें ये पता लगा, तुम लोग यहां चीजों के मालिक नहीं हो भाई, यू आर ए ट्रस्टी, चीजों के यूजर हो, आप यूज करो। है किसका सारा, सबको मालूम है, भूल जाते हैं सिर्फ। धीरे धीरे इसके ऊपर चिंतन करना स्टार्ट किया, मैं और मेरा खत्म होना स्टार्ट हुआ, किसका समझना शुरू कर दिया, परमात्मा का। मुझे याद है शुरू शुरू के जब हम ब्रह्मा कुमारी दिन जाना शुरू किया तो एक दिन अच्छे से चीजें दिमाग में बैठनी स्टार्ट करी। शुरू शुरू में आदमी मेहनत भी बहुत ज्यादा करता है, सबको मालूम है कहीं पे भी जाते हैं। तो एक दिन सुबह उठा तो मेरे घर के बाहर कार नहीं थी, सुबह सुबह 5-6 बजे उठा तो कार नहीं थी। आई डोंट नो आज की डेट में क्या सिचुएशन आएगी, लेकिन उस वक्त इतना मन शांत था, कुछ थॉट ही नहीं आया इसके बारे में। जस्ट ये जब आप एक टाइम पे सेटल हो जाता है माइंड तो पता लगता है कार आज मेरी है, भगवान ने अगर किसी और के पास भेजनी है तो भेज देगा, मेरी तो है नहीं ना, मैं उसको यूजर हूं। ऐसे ही जितनी भी फैसिलिटीज हम उसके यूजर्स हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी थोड़ी सी पढ़ाई कुछ दिनों की या कुछ महीनों की इतना अच्छा रिजल्ट ला रही है कि मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा। गाड़ी चला के जा रहा था, सम फेलो ब्रेक लगाई, वो इधर से आया इधर से आया, तो दूसरे को ही ब्लेम करते हैं इमीडिएटली, उसने मुझे ब्लेम किया, वो गंजे कैसे गाड़ी चला रहे हैं। बट विल यू बिलीव, मुझे गुस्सा नहीं आया, थॉट भी नहीं आई, इरिटेशन भी नहीं है उसके बारे में। तो आई वाज सो हैप्पी। और ज्यादा डिटेल में थोड़े सिस्टम्स पता लगे कि यस, ये सारी थॉट्स के अलावा भगवान के साथ कैसे आप रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। शुरू शुरू के अंदर जैसे बताते हैं फादर की रिलेशनशिप, ताकि आपको एक हैंड होल्डिंग मिल जाए, भगवान हमारे साथ है, हमारा हाथ पकड़ के चल रहा है। कितनी बड़ी फीलिंग है, ये फील करने वाली बात है कि ये पता किसी को लगे कि भगवान मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है, चिंता लगेगी किसी को, डर लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे छोटे बच्चे पिता को लेकर चलते हैं, उसका प्रोटेक्शन है आपके पास हमेशा, है ना। वो आपका जब धीरे धीरे एक फ्रेंडशिप वाली बात हो जाती है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सिचुएशन आ गई, कोई चीज मिल भी नहीं रही। अब तो ये तो खैर रोज ही होता है, कोई चीज नहीं मिल रही। आप लोग में जो थोड़े से इसको करते होंगे, थोड़ा माइंड स्टेबल रखते होंगे, ब्रह्मा कुमारीज में जाते होंगे, तो यही होता है, बाबा कहाँ है, 10 बार 5 मिनट तक नहीं ढूंढा, जैसे ही बाबा बोला चीज वो सामने मिल जाती। ऐसा सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि माइंड एकदम स्टेबल हो जाता है, टचिंग हो जाती है। ये एक ऐसी साइंस है टच करने वाली, जो कि अभी तक साइंस ने तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन एटलीस्ट हम ब्रह्मा कुमारीज के अंदर तो जरूर इसको अच्छे से पकड़ पाए। तो अब ये फीलिंग आ गई है, भगवान को साथी गाड़ी में भी बैठते हैं, थॉट आते हैं चलो बाबा साथ चलो, है ना। एक बाबा वर्ड इसलिए यूज करते हैं, मुझे याद आ रहा है हमारे चटर्जी दादा बाबा को अपने यूज करते थे, फादर के लिए भी यूज करते हैं, फादर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा क्लोजनेस आती है। भगवान भगवान बोलते रहे तो वो रिलेशनशिप नहीं बन पाती, वो रिलेशनशिप के लिए बाबा यहां यूज करते हैं। तो मैं देख रहा था एक होलसम जो पैकेज है, चाहे वो पीस के बारे में हो, एम्पावरमेंट के बारे में हो, दैट आई वॉज गेटिंग। नाउ कमिंग टू दिस सब्जेक्ट, आई थिंक दीदी ने, उर्मिल बहन ने इतना जो अच्छे से एक्सटेंसिवली कवर कर दिया। हम लोग वैसे भी इतने सारे प्रोग्राम कहीं पे भी अटेंड कर लें, आप लोग देख लीजिए, इस लर्निंग करेंगे कि हम लोग स्टेबल माइंड के टाइम पे डिसीजन लें और डिसपैशनेट हो गए डिसीजन लो, हमारे बीच में बाइसेस ना हो, है ना, थोड़ा सा पॉज करें कि इस डिसीजन लेने से पहले। ये चीजें तो आमतौर पर आपको फिर मिलेंगी, है ना, लेकिन दीदी ने जो इंट्यूशन की बात कही ना, या उसको मैं दूसरे तरीके से कहूंगा, जैसे हम लोग, मैं अपनी जैसे फीलिंग बताता हूं किसी भी डिसीजन के बारे में, कि डिसीजन लेते वक्त अगर आपने सोच लिया मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो डिसीजन कैसा होगा, उसमें कुछ ना कुछ बाइसेस आएंगे। लेकिन यहां पे क्या सिखाया हुआ है कि आप ट्रस्टी हो, ठीक है, किसका काम कर रहे हैं, भगवान का काम, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूं, आपने सिर्फ एक थॉट बनाया, आपको इतना इंपॉर्टेंट काम है, आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। अगर आप भगवान को नहीं जानते, इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है, रास्ते में 5 घंटे टेंशन रहेगी, होगा या नहीं होगा, उसका फर्क पड़ेगा होने या ना होने में, फर्क तो कुछ नहीं होना फिर भी। लेकिन चलते वक्त एक बार भगवान को याद करके थॉट आ गई, किसके काम के लिए जा रहा हूं, भगवान के काम के लिए, ठीक करेगा नहीं करेगा, जैसा उसको करवाना है वैसा करवाएगा। ये थॉट अगर डेवलप होगी उस वक्त, तो समझ लो आपके 5 घंटे बड़े मजे से जाने वाले हैं। कोई काम भगवान को जिम्मे कर दिया जाए, उसका काम समझ के कर लिया जाए, कितने आप हल्के रहेंगे, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल लाइट। तो आपकी जितने भी डिसीजन मेकिंग है, इफ यू डेडिकेट टू योर फादर कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं। हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं, बच्चों की लोगों को कितनी टेंशन होती है, हा? कि बच्चे क्या करेंगे, ठीक होंगे नहीं होंगे, किसके बच्चे हैं, गॉड, अभी जब आपके घर में बच्चे थे, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 3 साल पहले कहां था, किसी और जगह था, उस आत्मा ने हमारे पास आके जन्म लिया, हमारे परिवार में जन्म लिया। दो चीजें हैं उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले बात करी भगवान को डेडिकेट करके करना है, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल कैजुअल हो जाना है, कोई बात नहीं, भगवान का काम है, भगवान का कार्य कर रहे हैं, उससे ज्यादा सिंसियरिटी तो कहीं और होगी भी नहीं। सबसे ज्यादा सिंसियरिटी तभी आनी चाहिए, किसका काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। बच्चे किसके हैं, भगवान के हैं, सो दैट यू टेक बेस्ट केयर ऑफ देम। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान ने कितना उनको सफल बनाना है, भगवान भी सफल नहीं बनाता, भगवान कहते हैं सब आत्माएं अपना अपना कर्मों के हिसाब से उनको फल मिलने, अच्छे कर्म करके आई हैं, अच्छे आपके घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म करके आई होंगी तभी हुआ, आप उनका पालना कीजिए, आगे वो फर्दर ग्रो करेंगे अपने हिसाब से। तो एक डिस्पैशनेट इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मुझे तो बड़ा सिंपल सा फॉरवर्ड लगा है, बिन डिसीजन मेकर थ्रू आउट आई फील प्राउड, कि ये डिसीजन लेते वक्त मुझे हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज मेरा पर्सनल उसके कोई इंटरेस्ट होते नहीं है, और काम किसका कर रहे हैं, भगवान का कर रहे हैं, मेरा कोई काम है नहीं। तो मैं तो इसको हमेशा इसी तरीके से लेके चलता हूं, बाकी काफी डिटेल के अंदर दीदी ने बता दिया है, मुझे तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस दो मिनट चार मिनट का शेयर करना था वो आपके साथ किया है, मेरी बहुत बहुत शुभ भावनाएं आप लोग, आप बाकी जो हमारे सेशन होंगे हम लोग सब मिलकर अटेंड करेंगे, वी आर एंजॉइंग दैट, और जो यहां पे सारा मैनेजमेंट है उनको भी थैंक्स करते हैं, और आपको भी बहुत बहुत थैंक्स देता हूं फॉर लिसनिंग टू मी फॉर दिस फाइव मिनट्स, थैंक यू सो मच।
हम ब्रातर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके लिए दो लाइन कहना चाहूंगी, आपने इतनी सुंदर बातें हम सबके बीच में रखी, जो हम सबको लग रहा था ना प्रैक्टिकल, भाई साहब अपने लाइफ में कुछ बातों को जो उन्होंने अप्लाई किया है वो उन्होंने हम सबके बीच में रखी। आपके लिए कहना चाहूंगी, जो मुश्किलों में भी राहें आसान करते हैं, वो हर फैसले को परमात्मा के नाम करते हैं, लीडरशिप की मिसाल हैं आप, अपनी सूझबूझ से अपना और सबका कल्याण करते हैं आप, पुनः आपका धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, हमारे बीच में कैसी हस्ती है जो बहुत ही साइलेंस मधुर मुस्कान को लिए आप मंच पर देख रहे, हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुगंधा दीदी जी। आप एडमिनिस्ट्रेशन विंग कर्नाटका से आप जोनल कोऑर्डिनेटर है, बहुत ही अनुभवी और राज्यों का अभ्यास कराने के लिए माहिर है। आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप राजयोग का अभ्यास एवं आपकी शुभ प्रेरणाएं हम सबके बीच में रखें। दीदी जी के लिए कहना चाहूंगी, शांत समंदर की तरह जिनका स्वभाव होता है उनकी बातों में रूहानी असर और प्रभाव होता है, मिट जाते हैं मन की सारी उलझने और तनाव, जहाँ ज्ञान ध्यान और परमात्मा से लगाव होता है। तो ऐसी हमारी दीदी जी जिनका तन मन सदैव परमात्मा के प्यार में परमात्मा की सेवा में लगन में मगन है, तो मैं दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी शुभ प्रेरणाएं एवं राजयोग का अभ्यास कराएंगी। आदरणीय सुगंधा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। परम पूज्य परम पिता परमात्मा के दैवी संतान, हमारी देवी भाई बहन, स्पेशली हमारे गेस्ट, रेस्पेक्टेड गेस्ट, सभी को ओम शांति। अभी आप लोग थ्री टाइम्स ओम शांति सुना रहे थे, तो ओम शांति ये महामंत्र है, ये ओम शांति में मुख्य तीन बातें अपने जीवन में अप्लाई करने का, ये तीन बातें हैं। फर्स्ट, मैं कौन हूं, और सेकेंडली मैं किसका हूं, और थर्डली हमको क्या करना है जीवन में, मैं किसका हूँ, कौन हूँ और क्या करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जीवन में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी राइट करते कभी रॉन्ग हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में गीता का सार आ जाता है। फाइनल एग्जामिनेशन जो है जीवन का वो है गीता सार। उसमें भगवान यही कहता है कि नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। नष्टो मोह माना डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, लेकिन किससे डिटैच होना और कैसे डिटैच होना। डिटैचमेंट का अर्थ तो ये नहीं है कि सबको छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन सबके साथ रहते, सब कुछ करते, अनवांटेड थिंग्स के बारे में जो भी है अपने जीवन में आता है उन सब से डिटैच होना है। सो डिटैचमेंट फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स। क्या है अनवांटेड थिंग्स है ना अपने जीवन में? अभी तक भाई जी बहुत अच्छा अनुभव सुना रहे थे कैसे उनके जीवन में वांटेड थिंग्स जो भी है उसको अडॉप्ट किया है। जब जो कुछ भी हमको चाहिए उसको अडॉप्ट करने से अनवांटेड थिंग्स ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, मतलब हम डिटैच हो जाते हैं। क्या है वांटेड थिंग्स? हमको बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है जीवन में? स्मृति स्वरूप होना। स्मृति स्वरूप मीन्स कौन सा स्मृति होना है? एक तो फर्स्ट अपने ऊपर मैं कौन हूं ये स्मृति स्वरूप बनना है। दूसरा मैं किसका हूं इसका भी स्मृति स्वरूप बनना है। सो ये जब स्मृति आ जाता है ऑटोमेटिकली हम दूसरा सब भूल जाते हैं। जीवन में बहुत ऐसी बातें चलता है जो कभी भूल नहीं सकते हैं। कभी दुखी बात होता है, 1 year 2 years पहले या some years पहले कुछ कुछ अनवांटेड थिंग्स हुआ होगा, मतलब दुखी बातें कुछ घटनाएं ऐसी होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको भूल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भूल सकते हैं? भूलने के लिए क्या करना है? दुख की बातें भूलने के लिए क्या करना चाहिए? सो हम अभी अपने आप से ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी बातें बुद्धि में रखना है और क्या क्या बातें भूलना है। अनवांटेड थिंग्स जो दुख देता है अपने मन को उसको भूलना है, वो फर्स्ट डिवीजन हम अपने लिए लेना है। फर्स्ट डिवीजन है मतलब फर्स्ट डिसीजन है, निर्णय करना है क्या क्या हमको इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो याद रखना है, क्या क्या भूलना है, ये निर्णय करना है। क्या भूलना है? आप सब भूलना चाहते हो ना अनवांटेड थिंग्स, दुख की बातें, अशांति की बातें। अगर कोई कुछ आपको कुछ किया है, चीटिंग किया है, वो सब भूलने चाहते हो या उसको ही बुद्धि में रखना चाहते हो? भूलना है ना। कैसे भूलेंगे? भूलने के लिए क्या करेंगे? आपके पास कुछ है भूलने के लिए? भूलना है लेकिन उसको रिप्लेस करना है। कैसे भूलेंगे? जैसे थॉट्स, मेनी थॉट्स आता रहता है, वी आर द क्रिएटर ऑफ द थॉट्स। लेकिन जब अनवांटेड थिंग्स हमारी बुद्धि को बहुत सप्रेस करता है उसको क्या करना, रिप्लेस करना है विथ पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव को निकालने के लिए पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए। मतलब वी शुड हैव लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उस पॉजिटिव थिंकिंग को ही इस विश्वविद्यालय में राजयोग कहते हैं। राजयोग मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड फर्स्ट सब्जेक्ट सबको जो चाहिए। मतलब नेगेटिव को भूल करके पॉजिटिव को याद करना है, वो है स्मृति लब्धा। इससे क्या होता है, हमको जो प्राप्ति करना है वो सब प्राप्त होता है। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसको आप याद करेंगे तो आपको क्या प्राप्ति है, क्या प्राप्ति है? कुछ भी प्राप्ति नहीं है। अच्छी चीजें प्राप्त नहीं होता है ना, दुख ही प्राप्त होता है अनवांटेड थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स से। सो नेगेटिव थॉट्स को कैसे भूलना, उसका एक सिंपल मेथड है, वेरी सिंपल मेथड। वो मेथड है कि मैं कौन हूं, इसको अच्छी तरह से पहचानना है और उस स्टेज में रहना है, स्वमान की स्टेज। मैं कौन हूं ये स्वमान होना चाहिए, और उस स्वमान में जब हम रहेंगे तो ये जो अननेसेसरी थिंग वो हम भूल जाते हैं, विल फॉरगेट ऑल द अननेसेसरी थिंग्स। सो नाउ लेट अस सी, देखेंगे मैं कौन हूं। आप सब कल और आज क्लासेस तो किया, यू ऑल लिसन टू दिस क्लास, टू क्लासेस यू हैव डन। फर्स्ट थिंग, मैं कौन हूं। हम लोग अभी तक सोच रहे थे ये बॉडी सारा मैं हूं, बॉडी का कॉन्शियसनेस था। सो अभी कॉन्शियसनेस को परिवर्तन करना है। मैं ये पांच तत्व का जड़ चित्र जो है ये मैं नहीं हूं, इसको चलाने वाली मैं एक शक्ति हूं। सो कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, मैं बॉडी, इसके बदले मैं एक शक्ति हूं। कौन सा शक्ति है? मैं एक डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति हूं। मैं दिव्य शक्ति, मेरे में मन बुद्धि और संस्कार है। तो अपने को कंफर्म करना है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं मन बुद्धि संस्कार वाली एक दिव्य शक्ति हूं। वो दिव्य शक्ति की कॉन्शियसनेस ने अभी हम लोग रहने का प्रैक्टिस करना है। तभी क्या होता है, मन जो अशुद्ध विचार चलाता है, अनवांटेड थिंग्स मन में आता रहता है, वो साइलेंस हो जाता है। तो साइलेंस पावर के आधार पर ही हम ठीक तरह से कुछ डिसीजन ले सकते हैं। निर्णय शक्ति का आधार है मन को साइलेंस करना। जब मन साइलेंस हो जाता है वेस्ट थॉट से, तो ठीक तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। हर एक अपने अपने जीवन को डिसाइड करते हैं ना, कोई सोचते हैं मेरा डिसीजन अनुसार में मुझे रहना है, अपने अपनी निर्णय शक्ति सबको। लेकिन कभी कभी वो निर्णय शक्ति क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है रॉन्ग डिसीजन से। तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, पाप और पुण्य क्या होता है, इसको ठीक तरह से निर्णय करके परख करके निर्णय करना है। फिर हमको उस अनुसार चलना होता है, तभी हमारे जीवन में कभी भी हम अशांति नहीं हो सकते। जब रॉन्ग डिसीजन होता है तभी मन अशांत हो जाता है, क्योंकि उसका रिजल्ट ही वो है। रॉन्ग डिसीजन में रिजल्ट क्या होता है, वो मन को अशांति कराता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मैं एक शक्ति हूं, शांति स्वरूप का शक्ति हूं, लेकिन आपका मन सदैव शांति कैसे रह सकता है? इसके लिए राइट एंड रॉन्ग जो है उसको ठीक तरह से डिसाइड कर निर्णय करना चाहिए। डिसीजन शुड बी प्रॉपर, राइट डिसीजन। उसके लिए अपने को एक शक्ति समझना है, डिवाइन पावर। सो डिवाइन पावर समझेंगे तो ये जो अशुद्ध शक्ति, आसुरी शक्ति अपने अंदर जो है वो निकल जाएगा, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में राइट थिंग से चलेगा। तो एक सेकेंड आप सभी अपने को देखना, मैं कौन हूं, फर्स्ट इसका निर्णय कर लेना, मैं कौन हूं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट निर्णय शक्ति इसमें होना चाहिए. कौन हो आप? सुना है ना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा. आत्मा मान डिवाइन पावर जो यहां वृक्ति के बीच में रहता है. उसके ऊपर अभी वन सेकेंड आप सभी अपने मन से देखना, वो डिवाइन पावर को देखना. वन सेकेंड और कुछ भी नहीं सोचना है. मन में आप अपने स्वरूप को याद करना, मैं कौन हूं. मैं एक दिव्य शक्ति, मन बुद्धि संस्कार वाली एक शक्ति हूं. मैं मेरा ओरिजिनल स्वरूप में शांति स्वरूप हूं. दिस माय ओरिजिनलिटी, शांति. और मैं एक दिव्य शक्ति हूं. अपने को ऐसे समझ करके वन सेकेंड बैठना. तो इससे मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएगा, अनवांटेड थॉट्स नहीं आएगा. उसको जीतने का ये मेथड है आत्मस्वरूप. फिर मैं कहां से आई हूं इस शरीर के अंदर? वो साइलेंस वर्ल्ड. उस साइलेंस वर्ल्ड में चले जाने, बियॉन्ड द फाइव एलिमेंट्स. ये शरीर भी पांच तत्व का है. मैं ये पांच तत्व नहीं हूं, इससे परे हूं. आई एम बियॉन्ड फाइव एलिमेंट्स. सो अभी साइलेंस पावर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उस साइलेंस स्टेज से यहां आई हूं. साइलेंस पावर मेरा ओरिजिनलिटी. नेक्स्ट, आप अपने को बियॉन्ड द फाइव एलिमेंट्स एक शांति का स्थान है, वो है शांति धाम. मैं शांति धाम निवासी हूं ये कंफर्म करके उस शांति धाम को याद करना. एक पॉइंट ऑफ लाइट, शांति धाम निवासी. इस स्टेज में बैठ जाना सभी. और मेरा वास्तविक धर्म है पवित्रता और शांति. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये बॉडी का कॉन्शियस धर्म है. लेकिन मेरा धर्म इनसे परे वो है शांति और पवित्रता. उस धर्म में स्थित हो जाना. मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा, मन बुद्धि संस्कार सहित एक शक्ति, दिव्य शक्ति. मेरा स्थान है शांति का स्थान. और मेरा ओरिजिनल धर्म है शांति और पवित्रता. मैं बिल्कुल ही शुद्ध स्वरूप हूं. मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है. मेरा संस्कार भी बहुत सुशुद्ध प्योर है. मैं दैवी शक्ति वाली आत्मा. आई एम वेरी मच डिवाइन. इस स्टेज में बैठ जाना. मैं एक शक्ति, परम शक्ति, परमात्मा के संतान हूं. मैं एक दिव्य शक्ति, परम पवित्र, परमात्मा के संतान हूं, जो सर्व के लिए कॉमन है, सर्व धर्म वालों के लिए जो कॉमन है. परमपिता परमात्मा, ज्योति स्वरूप, निराकार ज्योति, सदाशिव, उनकी मैं संतान, मैं भी सबके लिए कॉमन हूं, सब मेरे हैं, मेरे भाई, और हम सब एक पिता के संतान, भाई भाई। इस स्टेज को अनुभव करना, अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बॉडी एंड बॉडी कॉन्शियस, बॉडी का धर्म से दूर, ओरिजिनल धर्म में सबके लिए हम सब कॉमन है, ये फीलिंग्स में बैठ जाना। इस अनुभव से हमें किसी के ऊपर घृणा या द्वेष नहीं होगा, सब अपना है। अपने समझेंगे तो हमको सबके ऊपर शुभ भावना होता है, तो ऐसे शुभ भावना के फीलिंग्स में बैठ जाना। फिर से रिपीट करना, मैं एक दिव्य शक्ति, शांति स्वरूप आत्मा हूं, मैं अपने ओरिजिनल धर्म में स्थित हूं, शांति और पवित्रता। सारा विश्व हमारा एक परिवार, हम सब भाई भाई है, एक परमपिता परमात्मा के संतान। हम सब एक घर से आए हैं, शांति धाम से आए। मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक शक्ति हूं, इस स्टेज में बैठने से कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएगा। तो हमारा डिसीजन जो है वो प्रॉपर डिसीजन होगा, प्रॉपर निर्णय शक्ति लेना है। तो इस साइलेंस स्टेज में बैठेंगे तो पिछले जो भी बातें हैं वो सब हम भूल सकते हैं। इस तरह से सभी प्रैक्टिस करना, डेली एटलीस्ट 5-5 मिनट प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ओरिजिनल स्टेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सुगंधा दीदी जी। तो इस सत्र के दौरान हमने ये जाना कि जब मन परिस्थितियों से ऊपर और मूल्यों से जुड़ा रहता है, तब लिया गया प्रत्येक निर्णय सफलता और संतुष्टि प्रदान करता है। आइए हम सब भी मिलकर एक संकल्प लें। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाएं तथा मूल्यों पर आधारित लेने का अभ्यास करें, ताकि हम जीवन में सहजता से, सरलता से आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सत्र का समापन करती हूँ। मंचा सीन हमारे सर्व वक्ताओं का एवं आप सभी उपस्थित भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारा अगला सत्र कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। ब्रेक की आवश्यकता है? पक्का? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे और पुनः हम यहीं अपने स्थान पर आकर के बैठेंगे. उसके पहले जस्ट वन मिनट साइलेंस और उसके बाद जिन्हें आवश्यक लगता है कि उठना है, ऐसे नहीं 5 मिनट ब्रेक्स में हम सब चले जाएं, जिन्हें आवश्यक है वे बेशक जाएं और तुरंत हम आकर अपने स्थान पर बैठे ताकि दूसरा सत्र हम समय पर प्रारंभ कर सके. ओम शांति.